हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लेकिन जिस तरह से झलक ने उस पर हाथ उठाया, उससे अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया हो। उसे बहुत गंदी सी फीलिंग आ रही थी। फिलहाल देर ना करते हुए वो सब सीधा बाहर की ओर जाने लगे थे। बाहर का नज़ारा देखकर आदित्य की आंखें हैरानी से और भी ज्यादा फैल गई थीं, क्योंकि जिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने झलक और अनामिका को बाहर जाने से रोका था, वे सब बड़ी ही बुरी हालत में गेट पर पड़े हुए थे। ये देखकर कबीर और आदित्य दोनों ही हैरानी से भर गए और जल्दी से आगे बढ़कर गार्ड्स को देखने लगे। आदित्य ने घबराकर पूछा, अरे ब्रदर, ये क्या हुआ तुम लोगों के साथ? किसने की है तुम लोगों की ये हालत? अनामिका और झलक चुपचाप एक तरफ खड़ी हुई थीं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी आदित्य ने आसपास नज़र दौड़ाई और उसे समझ आने लगा कि शायद इन लोगों पर किसी ने हमला कर दिया है। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी नाजुक और सिंपल सी दिखने वाली लड़की इस तरह से हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को मार सकती है, इसलिए किसी ने झलक की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन तभी झलक तुरंत आगे बढ़ी और साफ साफ बोली, मैंने मारा है आपके जाट्स को। झलक की ये बात सुनते ही आदित्य राणा की आंखें अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। वहीं कबीर, जो थोड़ी देर पहले अनामिका पर बरस रहा था, उसने जल्दी ही अनामिका को देखना बंद कर दिया और मन ही मन सोचने लगा कि ये लड़की कोई आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तभी कबीर ने खुद को थोड़ा संभालते हुए ऊंची आवाज में कहा, आखिर आप हैं कौन और यहाँ कर क्या रही हैं? क्या गुंडागर्दी करने आई हैं आप? जबरदस्ती हम दोनों को इस क्लब के अंदर ले आईं, ऊपर से क्लब के मालिक के सामने खड़े होकर उसे गालियां दे रही हैं। इतना ही नहीं, क्लब के मालिक पर ही हाथ उठा दिया। अरे आप करना क्या चाहती हैं? और अब तो आपने हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी मारपीट कर डाला है। जानती भी हैं इसका क्या मतलब हो सकता है? हम आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। झलक ने बिना डरे बिल्कुल बेबाक अंदाज में जवाब दिया, क्लब का मालिक है तो क्या हुआ? पुलिस कंप्लेंट तो मुझे आपके इस मालिक के खिलाफ करनी चाहिए। क्या जरूरत है इतने बेकार से रूल रेगुलेशन बनाने की? और इसमें बिना मेरी मर्जी के मेरा हाथ पकड़ा गया, मुझे सबके सामने डांस करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई, इसीलिए मैंने इस पर हाथ उठाया। और अगर इसने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो मैं इसके सारे दांत तोड़ दूंगी। झलक के इस बिंदास और बेखौफ अंदाज को देखकर अनामिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल वो खुद को कंट्रोल करते हुए झलक की बात पर मुंह दबाकर मन ही मन हंस पड़ी। फिर खुद को शांत किया और फिर तुरंत गंभीर होकर कबीर की तरफ देखती हुई बोली, अरे झलक मैडम, क्या कर रही हैं आप? इस तरह से कुछ भी मत बोलिए। और उन दोनों को देखकर बोली, प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप इस क्लब के मालिक हैं। प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए। हमें अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी और मेरे दोस्त, मतलब मेरी बहन को गुस्सा आ गया था, इसीलिए उसने गार्ड पर हाथ उठा दिया, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की थी। अब तो कबीर की आंखें और भी ज्यादा हैरानी से भर गई थीं। एक लड़की माफी मांग रही थी और दूसरी पूरी तरह लड़ने मरने पर उतारू थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किस रूप पर भरोसा किया जाए। तभी झलक की नज़र थोड़ी दूरी पर खड़े वहां मौजूद अपने गार्ड्स पर गई। वो समझ चुकी थी कि दादाजी ने ये गार्ड्स भेजे हैं, लेकिन अभी तक वे झलक और अनामिका की मदद करने के लिए आगे नहीं आए थे। इसका मतलब साफ था कि उनके पास अभी कोई ऑर्डर नहीं थे। झलक ने गहरी सांस ली और गार्ड्स की तरफ देखकर बोली, आप लोग वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? ये जो गार्ड्स यहां पड़े हुए हैं, इन्हें उठाकर ले जाइए और इनकी मरहम पट्टी कराइए। हम अब घर जा रहे हैं। इसके बाद वो आदित्य की तरफ मुड़ी और बोली, मिस्टर राणा, आई एम सॉरी, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। हमें नहीं पता था कि आप इस क्लब के मालिक हैं, वरना मैं आपको मुंह पर गालियां नहीं देती। और एक बात और, जो मैंने कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है। आपको अपनी ये बकवास रूल्स बदल लेनी चाहिए। उसके बाद झलक ने अनामिका का हाथ पकड़ा और सीधा जाकर गाड़ी में बैठ गई और वहां से बिना पीछे देखे चली गई। वहीं अब आदित्य उसे जाते हुए बस देखता ही रह गया। वो कुछ कहने या करने के बारे में सोचता ही रह गया था। उसे समझ ही नहीं आया उस लड़की ने उससे माफी मांगी या फिर एक धमकी देकर गई। वो एकदम बुत बना खड़ा रहा। वहीं कबीर गुस्से में इधर उधर टहलते हुए बोला, यार ये तूने क्या किया? कम से कम तुझे उससे ठीक से बात करके उसे जवाब तो देना चाहिए था। तुझे क्या जरूरत थी उसे इस तरह जाने देने की? और तूने देखा नहीं वो किस तरह बात करके गई? ऐसा कोई कैसे कर सकता है? मैं तो कहता हूँ हमें उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। इतनी बदतमीज लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। कबीर लगातार बड़बड़ाता जा रहा था, लेकिन आदित्य ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ सीधा जाकर अपनी शानदार गाड़ी में बैठ गया। कबीर तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। अगले ही पल आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से सड़क पर दौड़ाने लगा। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में बैठी अनामिका झलक की तरफ देखते हुए बोली, यार तुझे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी, बेचारा बस डांस ही तो करना चाहता था, और जिस तरह से वो अपना नाम बता रहा था, आदित्य राणा, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लगता है शहर की कोई बड़ी हस्ती है। मैं तो शहर में ज्यादा रही भी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे किसी की ज्यादा जानकारी नहीं है, हो सकता है दादाजी उसे जानते हों, क्या दादाजी से इस बारे में पूछा जाए, झलक ने शांति से गाड़ी चलाते हुए कहा। देखो अनामिका, इन सारी बातों का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातों के लिए दादाजी को परेशान करना ठीक नहीं, बाहर की दुनिया में ऐसे लोग हर गली हर नुक्कड़ पर मिल जाएंगे, हमें उनसे डील करना आना चाहिए, ना कि हर बात घर वालों तक पहुंचाना, समझ रही हो ना मेरी बात। अनामिका ने हल्का सा सिर हिलाकर हामी भरी। थोड़ी ही देर बाद झलक ने गाड़ी सीधे मेंशन के बाहर लाकर रोक दी। वहीं दूसरी तरफ आदित्य राणा की रात पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। झलक का बेखौफ अंदाज, उसका हाथ पकड़कर उसे क्लब के अंदर ले जाना, उसके मुंह पर गालियां देना और फिर सबके सामने उसे थप्पड़ मार देना, ये सब बातें आदित्य के दिमाग में बार बार घूम रही थी। वो चाहकर भी इन सब बातों को भूल नहीं पा रहा था। उसे बेहद अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। पूरी रात वो कमरे में चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसका दिल और दिमाग जैसे झलक के नाम से ही अटक गए थे। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ खुराना से सगाई के बाद आकांक्षा के पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। उसे एक अलग ही तरह की अनुभूति हो रही थी। पूरी रात वो खुशी के मारे सो नहीं पाई। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी की सारी खुशियां अब ब्याज समेत लौट आई हैं। उसने मन ही मन ये भी सोच लिया था कि अगर उसकी शादी सिद्धार्थ से हो जाती है तो वो रणविजय से बचने का भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। लेकिन उसके बेचैन दिल में ये ख्याल भी आया कि रणविजय भी देखने में कुछ कम नहीं है। अगर वो एक रात उसके साथ गुजार ले तो उसे कोई खास परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ इस बात की थी कि ये सब सिद्धार्थ के सामने ना आ जाए। ये सोच उसे खुद भी थोड़ी अजीब लगी। सिद्धार्थ का उसके करीब आना, उसे छूना, उसके होठों को चूमना, ये सब सोचकर उसे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सिद्धार्थ के इतने करीब होने से उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई।
वहीं दूसरी तरफ झलक और अनामिका मेंशन पहुंची। उस वक्त घड़ी में रात के 2 बज चुके थे। झलक बिना कुछ कहे अपने कमरे में गई। अब अनामिका ने झलक से दोबारा बात करने की हिम्मत नहीं की और बस उसकी ओर देखती ही रह गई। झलक ने बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। कपड़े चेंज करने के बाद वो सीधा बेड पर आ गई और छत की ओर देखते हुए सोचों में खो गई। और तभी